मुश्किल अल्फाज के मादा और उनकी वजाहत। आप आज के सबक में जो आपको अल्फाज नहीं आते उन पर निशान लगाएं, सर्कल करें कि ये अल्फाज जो हैं ये मुश्किल हैं। जी आप बताइए, अब कितने अल्फाज हैं जो आपको नहीं आते? जी आप
32 खतार
खत्तार एक है, और आपका असबगा दो हो गए, यानी आपका एक ही है, इनका भी एक है, और आपका नस्तुर्रुहु। अच्छा जी आपका हाँ असबगा जी जाजिन। अच्छा जी सेम, और कोई पीछे वालों का कोई रह गया? वो जो के बता दिया तो ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का एक ही है। ठीक है तो आइए हम देखते हैं आयत नंबर 20 में लफ्ज है असबगा, सीन बागैन। इसके मानी होते हैं, ये वैसे आप पहले भी जो है वो पढ़ चुकी हैं, और सीन बागैन इसके बानी है मुकम्मल करना, पूरा करना, पूरा करना। पूरा करने के लिए कुरान में पांच लफ्ज आए हैं, और ये जो है ये पूरा मुकम्मल करने का पांचवा दर्जा है। एक है तम्मा, है ना, तमाम। जैसे किसी चीज के इस हद तक पहुंच जाना कि जिसके बाद किसी और खारजी चीज की जरूरत ना रहे। व तम्मत कलिमत रब्बी का सिद्क व अदला, है ना, अतम्मा इस तरह पूरी करना कि उसमें कोई कमी ना रहे। इसका इस्तेमाल जो है ना, वो मसलन आप गिनती कर रही हैं 1 2 3 4, और मैं आपको कहूँ इसको मुकम्मल करो तो आप इसको एंड तक फिर ले जाएं। फिर इसी तरह जो है वो मिकदार है किसी चीज की, उसको पूरा कर दिया जाए, अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी है उसको पूरा, तो बहरहाल पूरा करने के माने में आता है। जैसे मिकदार बात मम तो अलैकुम नेमती, कि अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी, पूरी कर दी। मुद्दत पूरी करने के लिए भी आता है, अतिमुस्याम, अतिमुस्यामा इलल्लैल। तो मुख्तलिफ मानी में इस तरह ही आता है, मुद्दत के लिए, मिकदार के लिए, गिनती के लिए। फइन अतममता अशरन फमिन इंदिक, अब पढ़ चुकी ना, ये किसने कहा था, अगर मैं 10 साल पूरे कर दूं तो तुम्हारी तरफ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बल्कि उन कैसे शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा था, फाइन अतममता अशरन, अगर तू 10 पूरे कर दे, अगर होता अतमम तू, असल में किताब में अतमम तू नजर आ रहा था, लेकिन अतममता, अगर तू 10 पूरे कर दे, फमिन इंदिक, तो फिर ये तेरी तरफ से एहसान होगा। खैर तो एक है अतम्मा, और दूसरा लफ्ज है अकमला, अल्यौमा अकमल तो लकुम दीनकुम। तो अकमल जो है इसके मानी है कि जो काम आपने शुरू किया हुआ है उसको मुकम्मल करें, पाया तकमील तक किसी काम को पहुंचाना, है ना। जैसे वल वालिदातु युर्देना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, काम 2 साल मुकम्मल। तो इसके मानी होते हैं किसी चीज को इस तरह पूरा करना कि उसकी गायत पूरी हो जाए। तीसरा है औफा, वफा करना, औफू बिअहदी उफी बिअहदिकुम, फऔफुल कैला वल मीजान, या पहले पढ़ चुके हैं। ये तीसरा है वफा करना, अहद है, माप तोल, जिंदगी या शर्त और अजर को पूरा करने के लिए आता है। चौथा लफ्ज है कजा, काफ दाद अलिफ, यानी या के ऊपर आप अलिफ डाल दें। इसका मतलब क्या होता है, जब इसकी निस्बत इंसान की तरफ हो तो जिम्मेदारी पूरी करना, इससे फारिग होना जो है उसके लिए ये आता है। मसलन फाइजा कजई तुम मनासिककुम, जब तुम हज के अरकान पूरे कर दो, फज़कुरुल्लाह का जिक्रकुम आबाअकुम, तो अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को किया करते थे। तो ये हैं इसके माने। अच्छा आखिरी जो पढ़ना है, जो समझना है, वो है असबगा। ये चार इसलिए बताए कि पांचवा समझ आ जाए, जब मैं ये कहती हूँ ना कि इस लफ्ज का पांचवा दर्जा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? पहली सीढ़ी आती होगी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, तो ही पांचवी सीढ़ी पे पहुंचेंगे ना, फिर पांचवी बात समझ में आएगी। तो असबगा सीन बा गैन, इसका लफ्ज किसी चीज के तमाम और कमाल पर दलालत करता है, किसी चीज के कमाल पर भी और तमाम पर भी दलालत करता है। इमाम रागिब इस्फहानी कहते हैं कि इसमें वुसअत और आसानी का मफहूम पाया जाता है। साबिग सीन अलिफ बा गैन, खुली जरा को कहते हैं, किसे कहते हैं? ऐसी खेती, ऐसी जमीन जो खुली है उसको भी कहते हैं। तो असबगा किसी काम को इस तरह पूरे करना कि इसमें कुछ भी कसर या कमी ना रहे और गर्ज़ो गायब पूरी आ जाए, पूरी हो जाए। इसका इस लफ्ज का कहते हैं अमूमन इस्तेमाल वुजू के लिए आता है, जैसे वुजू पूरी करना, पूरा करना, और नेमतों के पूरा करने के लिए भी आता है। नेमतों के पूरा करने के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज है और ये आयत नंबर 22 में है, बिल उर्वती, क्या है रूट इसका? आयन रा, इसके मानी क्या होते हैं? दस्ता, कड़ा, हर वो चीज जिसे पकड़कर लटका जा सके। आयन रा वो कहते हैं हर वो चीज जिसे पकड़कर कोई लटक जाए। फकदिस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, कहते हैं असल में उर्वा जो है ये एक किस्म की खारदार झाड़ी होती है, और ये पीलू की ऐसी किस्म होती है, ऐसा दरख्त होता है कि जो ऊंटों के लिए आखिरी सहारा होता है। ऊंटों के लिए आखिरी सहारा। अब जाहिर है कि ऊंट है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो बस पकड़कर उनको एक सहारा मिल गया ना, उरवा। सहारे के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, जब पकड़ आप किसी चीज को पकड़ कर लटकते हैं तो क्या एक सहारा लेते हैं ना उसे, एक आसरा आपको होता है, इसके लिए भी आता है। अच्छा जी, और किसी ने पूछा था ये आयत 24 में है, नस्तर रहू, क्या रूट है इसका? द्वाद रारा, जरर नुकसान के लिए भी कहते हैं, और यहाँ पे अल्फाज की ज्यादती, मानी की ज्यादती पर दलालत करती है। तोए का इजाफा है, रा पर शब्द है तो रा का इजाफा है। तो यहाँ पे दरअसल जो बात कही जा रही है कि नस्तर्रुहु का मानी क्या है, कि इस तरारी कैफियत में हम उसको, उनको मुब्तिला करेंगे, हम उनको बेबस कर देंगे, बेबस कर देंगे, इस तरारी कैफियत। तो असल में तो आप जरर नुकसान से इसको जो है वो याद रखें, और फिर इससे आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अब नुकसान उसको, उनको पहुंचाना है ना। और अब यहाँ पे चूंकि रा पर शद है तो ये भी आ चुकी है, तो मानिए कि उनको बेबस कर देंगे, बेचारगी की हालत में मुब्तिला कर देंगे। फिर आपने, चलें आपने तो ये नहीं कहा, आपको माशाल्लाह आता है, आप बता दीजिए, आयत 27 में है नफीदत, क्या मानिए इसके? नून फा दाल खत्म होना के लिए आता है, लेकिन खत्म भी तो लफ्ज आया है ना, खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम, आप पढ़ चुकी, उसमें उस खत्म करने में और इस खत्म करने में क्या फर्क है? अब ये ऐसे आना चाहिए आपको, एक बंदा बताएगा, मोहर तो लग गई ठीक है, तो फिर यहां क्या है, क्या खत्म? असल में दोनों लफ्ज खत्म होने के लिए आते हैं, खा ता मीम भी और नून फा दाल भी, और इन दोनों का जो फर्क है अहम है, और जो फर्क है वो ये है कि नफदा का मतलब होता है किसी चीज का खत्म होकर बाकी ना रहना, फना हो जाना, और इसकी जिद है बकिया, وَعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, یہ آپ پیچھے پڑ چکی ہیں, سورت نمبر 16 آیت نمبر 96. جو ختمہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مثلا کسی کام سے فارغ ہونا, ختم العمل. آپ جو کام کر رہی تھی مثلا آپ کلاس لے رہی تھی, آپ کی کلاس ختم ہو گئی, ابھی آپ اس کلاس سے فارغ ہو گئی ہیں. ختم الکتاب, پوری کتاب اب آپ نے پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ختم جو ہوتا ہے وہ چیز بحال رہتی ہے, اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی, بس کر لیا جو کر رہی تھی, فی الوقت آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کا جو پیریڈ ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو گیا نا, لیکن وہ دوبارہ تو ہوگا, لیکن جو ایک دفعہ ختم ہو گیا ہے اس میں تو کمی بیشی نہیں کر سکتی, لیکن ابھی وہ پیریڈ پھر دوبارہ کل پرسوں ہوگا, وہ بحال ہے ابھی. لیکن جو نفادہ ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, کہ چیز کا ختم ہو کر باقی نہ رہنا, فنا ہو جانا. اور ختمہ کا لفظ کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد اسے بند کر کے سیل کرنے کے لیے بھی آتا ہے, تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جا سکے. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. خاتم النبیین, نبوت پر مہر لگا دینے والے, اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. خیر, پھر اس کے بعد جو ہے ایک لفظ ہے خطار, خا تا را اس کا روٹ ہے, اور اس کے معنی ہے دھوکا دینا. خطار کے دھوکا دینے کے لیے قرآن میں 6 لفظ آئے ہیں, اور اس کا 6ٹا نمبر ہے خطارا. میں 5 آپ کو پوچھوں تو مشکل ہے, اور اگر میں بتاؤں تو مشکل ہے, کیا کریں پھر؟ میں بتاؤں جی, ایک آدھ آپ بتا سکتے, بتائیے ایک بتائیے جی. شاباش. یخادعون اللہ, خدا, حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا, یہ دھوکہ دینے کا دوسرا درجہ ہے. حقیقت چھپا کر اپنا مقصد حل کرنا اور مخالف کو دھوکہ دینا, یہ دوسرا درجہ ہے. اور بتائیے, غرہ, شاباش, یہ پہلا درجہ ہے. چلے دو سیڑھیاں تو کر دی انہوں نے مکمل. غرہ ہوتا ہے کسی کو غافل پا کر اسے اپنا مقصد حاصل کرنا, غرور بھی اسی سے ہے, متاع الغرور, دھوکہ دینا. یعنی غرور ہوتا ہے غین پر جب پیش آتی ہے تو دھوکہ دینا, اور غین پر جب زبر آتی ہے نا تو دھوکہ دینے والا. ایک ہوتا ہے غرور, دھوکہ دینا, غرور, دھوکہ دینے والا. تو ہر وہ وہم جو انسان کو تکلیف سے دوچار کرے, جیسے پیاسے کو سراب, اب پیاسا ہے اس کو پانی پینا ہے, دور سے چمکتی ہوئی ریت اس کو یوں لگتی ہے کہ اب پیاس اس کی بجھ جائے گی, تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے نا. وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور, ہے نا. خیر, تو یہ دو تو ہو گئے, اب آپ کے رہ گئے 3, 4 اور 5. نہیں, وہ تو بہرحال ڈفرینٹ ایک چیز ہے نا. ہاں, یہاں پہ جو خاص اس معنی میں جو استعمال ہو رہا ہے وہ بتائیے آپ. چلے میں بتا دیتی ہوں. تیسرا تو بڑا آسان ہے, آپ کہیں گے یہ تو ہمیں آتا تھا, خیانت. خانہ, آپ نے اتنی لمبا اونچا اون کیا کہ واقعی آپ کو آتا تو تھا. خانہ, خفیہ طور پر عہد شکنی کرنا. خوان, اس سب مبالغے کا صیغہ ہے. ان اللہ لا یحب الخائنین, تو شیطان کے لیے آیا ہے نا خوان, بہت بڑا دھوکہ باز. تو خانہ میں کیا ہوتا ہے, عہد اور امانت اور دین میں خفیہ طور پر دھوکہ دینا. خیانت یہی ہوتی ہے نا, امانت کے طور پہ چیز اس کو رکھی جاتی ہے اس کے پاس, لیکن وہ اس میں خیانت کرتا ہے, یعنی دھوکہ دیتا ہے. چوتھا بھی آپ کو آتا ہے ویسے, خزالہ. خزالہ, زبانی دوستی کا دم بھرنے والا اور وقت پڑنے پر دغا دینے والا. ان الشیطان خزولا, اب سب آ رہے ہیں ماشاءاللہ, چلو یہ بھی صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہے پانچواں, راغا الہ, یہ آپ کے لیے بھی نیا ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے. راغا, रागा जो है जिसका रूट राव व गैन है, चुपके से किसी की तरफ मायल होना, किसी पर पिल पड़ना मकरो फरेब के जरिए, जैसे लूमड़ी को रवाख कहते हैं, आप लूमड़ी याद कर लें रवाख। और इसके मानी क्या होते हैं कि लूमड़ी क्या करती है, हीले और तदबीर से धोखा देती है ना। कहते हैं ना, दो बंदरों में लड़ाई हो गई और लड़ाई किस चीज पर हो रही थी, एक रोटी पर। तो लूमड़ी ने कहा कि आओ मैं तुम्हें दरमियान में से सही इसका तकसीम करके देती हूँ। लूमड़ी ने जब उसकी तकसीम करनी शुरू की तो अब वो जब तराजू में रखी रोटी दो टुकड़े करके, एक एक तराजू में, दूसरा दूसरे तराजू में, एक तरफ का भारी हो गया, उसने एक निवाला उसमें से तोड़ा मुंह में डाला, अब दूसरी तरफ का भारी हो गया उसमें से तोड़ा एक निवाला मुंह में डाला। अब वो कुछ कहते हैं, उसकी तरफ लपकते हैं, तो कहती है कि एक जैसा अदल करना चाहती हूँ। तो इस तरह रोटी खत्म हो गई, रोटी खत्म हो गई। तो रवाग नहीं बनना चाहिए, बाद लोग धोखादही में काम खत्म कर जाते हैं। अच्छा खैर, हम अब आते हैं अपने आज के सबक पर, और वो है खतारा। खतारा होता है बुरी तरह बेवफाई करना। ऐसी गद्दारी को कहते हैं जिसे इतनी कोशिश से किया जाए कि इंसान कमजोर पड़ जाए और उसके अजा ढीले पड़ जाए। मुसलसल धोखा देते और बेवफाई करते चले जाना। मुसलसल बुरी तरह बेवफाई करना और मुसलसल करते चले जाना। और आप देखें कि आप किसी से वफाई बेवफाई करते हैं, करते चले जाते हैं, तो फिर क्या है कि इंसान फिर उससे कमजोर पड़ जाता है ना, उसके अज़ा जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। तो ढीला होना, सुस्त होना, उसके लिए भी तखतरा आता है।